الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صبر چشتی ساقوی ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے نئے CWTC کمیونٹی پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں. اور میں بہت مشکور ہوں کہ ہمارے ہاں کاؤنسلر سمینہ ظہیر جو ملکسٹون اور ڈیپ رش وارڈ کی ریپرزینٹیو ہیں وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا.
نہیں, بہت بہت مہربانی. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بہت بزی ہوں گے, خاص کر جو آج کل نئے طریقے ہیں زوم کے, فیس بک کے, آن لائن کا. اس میں جو میٹنگس ہوتی ہیں وہ بہت ساری میٹنگس ہوں گی. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سننے والے ہیں, جو ناظرین ہیں, ان کو یہ بتائیں کہ جو یہ پینڈیمک ہے, یہ COVID-19 ہے, اس کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس میں خاص کر جنرل کمیونٹیز میں اور ہمارے لوگوں پہ کیا گزری ہے.
میرا خیال ہے کہ ہم پہلے ہمیشہ سنا کرتے تھے کہ فلاں زمانے میں ایک وبا پڑی اور اتنے لوگ مارے گئے.
جی جی.
اور شاید ہم بھی ایک وہ جنریشن ہے کہ جو اس کو ایکسپیرئنس کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یو کے میں خاص کر ہماری جو بیم کمیونٹی ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوئی ہے. افیکٹڈ اس طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ہماری فرنٹ لائن سروسز میں میجورٹی لوگ ہماری بیم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اگر شروع کریں این ایچ ایس سے اسٹارٹ کریں اور ہماری جو ٹیک اویز ٹیکسی ڈرائیور تک, آپ کو ہر جگہ بیم کمیونٹی سے لوگ وابستہ نظر آئیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شروع میں زیادہ اموات ہوئیں اور بے شمار لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں, اس میں زیادہ تر افراد جو ہے وہ ہماری بیم کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا. اور آپ یہ سوچے کہ ایک زندگی آپ کے فیملی میں سے ایک ممبر چلا جائے تو آپ کا کتنا نقصان ہوتا ہے. اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت سارے قیمتی لوگ کھوئے.
جی جی.
ایک افیکٹ ہم پہ سب سے زیادہ یہ ہوا.
بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ کیوں ہوا, خاص کر ہماری جو بیم کمیونٹی.
میرا خیال ہے کہ نمبر ون انکوالٹیز, کہ جب آپ جانتے ہیں کہ ایک سرٹن کمیونٹی جو ہے وہ اس کا امیون سسٹم اس کنٹری میں از ویکر دین ادر, تو پھر آپ کی جو اتھارٹیز ہیں, جو لوگ ڈیسیژن میکرز ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ ایسی کمیونٹیز کو فرنٹ لائن پہ کیوں لا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے سب سے بڑی ایک وجہ یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ آپ جانتے تھے کہ جو بیم کمیونٹی کا ڈی این اے ہے, ان کی جو امیونٹی ہے وہ ویک ہے, تو آپ ان کو فرنٹ لائن پہ لایا گیا. اور پھر اس کے بعد جو آپ کے سیفٹی میئرز تھے وہ موجود نہیں تھے. آپ نے دیکھا اس کے بارے میں نیوز میں ہر جگہ کہ لوگ جو ان سے ہیں ان کے پاس ماسک نہیں ہیں, اور ڈاکٹرز اور نرسز اور اسٹاف اپیل پبلک سے کر رہے ہیں.
ساتھ ساتھ میں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ جو پینڈیمک ہے, یہ جو وائرس ہے, یہ ایک دم آیا ہے کہ لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. اور اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا وہ اندازہ نہیں تھا.
لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب یہ وائرس چائنا میں اسٹارٹ ہوا اور جو اس کی صورت حال تھی, اگر دوسرے ممالک اس کی تیاری کر سکتے تھے. میرا خیال ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے اس کو سیریس نہیں لیا.
سیریس
نہیں لیا, اور جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا
اور بلیم گیم میں پڑ گئے.
ہاں, اور ابھی بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کہ بار بار بیم کمیونٹی کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ اٹس اے کلیئر ریسزم.
جو اب جو موجودہ حالات ہیں, جو ہمارے لوگوں پہ اثر ہوا ہے, ذہنی صحت, فائنینشیل جو ہے ان کی کیپیسٹی پہ, اس کے بارے میں آپ بتائیں. کیونکہ آپ مجھے معلوم ہیں بہت ایکٹیوسٹ ہیں, کمیونٹی میں بہت کام کرتی ہیں, تو اس پہ आपका क्या असेसमेंट है, क्या अंदाज़ा है?
आप देखें तो हमारी बेम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा, आप जो भी आप शोभा उठा के देखेंगे, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई है।
ठीक।
उसकी एक रीज़न ये है कि जो आप कोविड से पहले का अगर आप डाटा उठा के देखें, आपको हर जगह ये चीज़ बार बार नज़र आएगी कि गुर्बत पसमानदगी की वजह से हम पहले ही सफ़र कर रहे थे
जी।
और ऊपर से इस कोविड की 19 की सिचुएशन की वजह से उसने हम पे बहुत गहरा असर छोड़ा है।
जी।
आप ये खाली नहीं कह सकते कि इसमें आपकी जहनी सेहत, आपकी मुआशी हालात वो अफेक्ट हुए हैं। लोगों के सोचने का अंदाज जो है वो मेरा ख्याल है कि बदल गया है इस वजह से कि आप ऑलरेडी ही एक लोअर लेवल पे हों और आप ऊपर से इस किस्म के हालात हों तो आप सोच सकते हैं कि वो आपको कहाँ ले जाएंगे।
तो आपके आपने जब कम्युनिटी में ये लोगों के असरात लिए हैं, कम्युनिकेशन आपने जो सब की है, तो उसमें आपने क्या क्या मालूमात आपको हासिल हुई है?
सबसे ज़्यादा जब हम लॉकडाउन में मार्च में जो जो मेजर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो ज़ाहिर है कि हमारी कम्युनिकेशन ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया, टेलीफोन और मैसेजिंग सिस्टम के ज़रिए ही थी। सबसे ज़्यादा जो कॉल्स आई वो लोगों को कि उनकी उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स फूड वाइज, आपकी एनर्जी वाइज, और आप शॉक्ड हो जाएंगे कि सुनकर के कितने लोगों की हमने सपोर्ट की। और मेरा ख्याल है मुझे दाद देनी चाहिए, हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने बहुत सारी सारा काम किया और चैरिटीज़ इस्टेब्लिश की और उन्होंने फिर एक ये नहीं किया कि उन्होंने इंडिविजुअली काम किया, उन्होंने मिलके एक ग्रुप बना लिया और उन्होंने ना सिर्फ के बेम कम्युनिटी को वो सारी सपोर्ट प्रोवाइड की बल्कि पूरे रॉचडेल में, मिडिल्टन, हेवुड, लिटिल बरो, जहाँ भी किसी ने मदद के लिए आवाज़ लगाई उन्होंने वो पीछे नहीं
जो चैरिटेबल काम है, वेलबींग काम है, सेहत का काम है, ये तो एक सोसाइटी का इशू है, ऐसा ह्यूमन बींग इशू, तो उसमें सभी को इकट्ठा होना चाहिए और हुए हैं।
मेरा ख्याल है कि हम इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि बींग ए मुस्लिम हमारी दिन जो है ना वो चैरिटी के आवाज़ से शुरू होता है और इख्तिताम, क्योंकि हम जो भी काम करने जाते हैं वो चैरिटी उसमें एक लाजिम हिस्सा है। और बावजूद इसके कि आपका आपकी पसमानदगी में और गुर्बत में सबसे नीचे हैं इस मुल्क में, लेकिन चैरिटी देने में हम सबसे ऊपर हैं
अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ साथ में लोगों की जो डिप्रेशन है इसकी वजह से और डोमेस्टिक अब्यूज़ के जो डेटा आ रहा है वो भी इंक्रीज पे आ रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे?
अराउंड द वर्ल्ड ओवर 20% इंक्रीज देखने में आया डोमेस्टिक वायलेंस में। और जब हमें हमने क्योंकि हमने यहाँ रॉयल काउंसिल ने के जो सीनियर ऑफिसर्स थे और जो वॉलंटियर्स ग्राउंड पे काम कर रहे थे उन्होंने एक ग्रुप सेटअप किया था ताकि हम इन टच रहें और हम वीकली जूम पे हम मीटिंग करते रहे। तो जैसे ही हमें इंडिकेशन मिली कि डोमेस्टिक वायलेंस राइज हो रहा है और एज ए काउंसलर भी आई स्टार्टेड फीलिंग कि मुझे ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं और ज़्यादा मसला ये था कि जब आप एक घर में बंद हों तो आप किसी से रब्ता कैसे कायम करें। तो लोकल लेवल के ऊपर फिर हमें हमने कंपेन स्टार्ट की, आपने देखा होगा बेशुमार मुख्तलिफ ज़बानों में, उर्दू में, बंगाली में, गुजराती में, अरबी में हमने मैसेजेस और कॉन्टैक्ट नंबर किए और फिर क्रेसेंट रेडियो से हमने एक कंपेन शुरू की। और आप इस बात पे भी हैरान होंगे कि अभी भी हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस किस्म की कंपेन को पसंद नहीं करते, ये भी देखने में आया। और बात ये कि जब किसी को मदद की ज़रूरत हो फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन बंदा आपको मदद ऑफर कर रहा है?
तो ये जो लोग जो जिन्हों को आपकी ज़रूरत है, जिस हालात से वो गुजर रहे हैं, चाहे डिप्रेशन हो, मुश्किलात हो वगैरह, या सर्विसेज की सपोर्ट चाहिए, तो आप काउंसिल क्या इकदाम कर रही हैं ताकि उनको ये वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करें, क्या क्या अवेलेबल है ताकि उनको ये सहूलत फ्राहम की जाए?
मैं हमेशा से कहती हूँ कि खाली टेक्नोलॉजी जो है हमारे मसले का हल नहीं है। हम इस वक्त अपनी सारी चीज़ों को इंटरनेट और सोशल मीडिया पे ले आए हैं, हमारी सर्विसेज, हमारे टेलीफोन नंबर, आपका
मटेरियल। लोगों को पता भी नहीं है कि ये मुस्बत है या मनफी है, वो बेचारे हैं।
और सबसे जो है ना परेशानी की बात ये है कि जब मेम कम्युनिटी आपकी पसमानदगी और गुर्बत से ऑलरेडी लाचार है, वो सबसे पहले अपने बिल्स कम करती है और सबसे पहला नंबर इंटरनेट और टेलीफोन का आता है। ठीक है, जब और आप अपनी जो जितनी फैसिलिटीज़ हैं उनको आप इंटरनेट पे प्रेजेंट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर प्रेजेंट कर रहे हैं, मीडिया पर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने बड़ी तादाद में ऐसे लोग होंगे कि जो कि इन सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते। और फिर जबान का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, आप समझते हैं,
और कल्चर सेंसिटिविटी वो भी।
और मैं मुझे अफसोस भी हुआ और हैरत भी हुई कि जिस किस्म की ट्रांसलेशन गवर्नमेंट लेवल पे प्रोवाइड की गई, कि अगर आपने गूगल की ट्रांसलेशन करनी थी जिसका ना कोई सिर है ना पैर है, तो फिर लोग वो जो कम से कम उर्दू या बंगाली या अरबी पढ़ना जानते हैं और वो पढ़ के किसी दूसरे को मदद भी फ्राहम कर सकते हैं, उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा
कि ये क्या अच्छी बात आपने की है। क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये भी हमारा एक चैलेंज है, क्योंकि हम इस पे गौर कर सकते हैं, हम सपोर्ट कर सकते हैं सर्विसेज को भी, आप ऐसा लिखें, ऐसा ट्रांसलेट करें, चेक कराएं, ताकि एक जो इंफॉर्मेशन है वो क्वालिटी हो, उसमें स्टैंडर्ड हो, ताकि वो समझ सकें। इनका टाइप सेट भी रॉन्ग होता है, तो मशवरा देने वाले भी और करवाने वाले भी इनको चेक बैलेंस करना चाहिए,
बिल्कुल करना चाहिए। मैं अग्री करती हूं।
और अभी आज ही बल्कि मुझे एक ऐसी ईमेल आई है, तो मैंने और उन्होंने लिखा कि जी आप इसको आगे प्रमोट करें, उसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। तो मैंने जब देखा, क्योंकि हम उनको जानते हैं, वो हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, तो जब मैंने देखा तो उर्दू को ही मैं पहले देखूँगा, तो मैंने पहले पेज देखा तो मैं तो हैरान हो गया। और ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर, और आगे जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, कि क्वालिटी चेक नहीं हुआ। और जिन्होंने ट्रांसलेट किया है वो रेगुलर सर्विस प्रोवाइडर है ट्रांसलेशन में, ठीक है जी। तो यकीन करें, मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो है ना वो बेहतर ट्रांसलेशन कर ले, ठीक है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप इसको मार्केटिंग ना करें, इसको चेक करें।
आपकी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखें, बेशुमार आप इदारों में सर्जरीज में चले जाएं, आप लीफलेट उठा के देखें।
और दूसरी तो ये बात है,
पुअर क्वालिटी ट्रांसलेशन,
दूसरी ये बात है जो हमें देखना चाहिए और हमें इकरार करना चाहिए कि जो हमारे फ्रंट लाइन जो क्योंकि उर्दू की बात करें, जो हमारे एशियन बहन भाई हैं, जो स्टाफ हैं, अगर उनको उर्दू नहीं आती तो वो कहें अपनी सर्विस को, मुझे उर्दू नहीं आती, बजाय के हाँ जी ट्रांसलेशन करवा लीजिए, ठीक है। ये गलत बात है, अक्सर जो मैं देखता हूँ ट्रांसलेशन गलत होती है, फॉन्ट स्टाइल गलत होती है, और इस पर जो जो आप इम्पैक्ट करना चाह रहे हैं वो नहीं होता,
नहीं होता बिल्कुल। और मैं इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मैंने इस कोविड के दौरान देखा है, कि जब हमने देखा कि ये एस्केलेट हो रहा है, उसकी रीज़न क्या है, रीज़न क्या थी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल्टर ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो उन जबानों में जो है मौजूद नहीं थी। फिर मैंने रोस्टर काउंसिल, हमारी मीटिंग जब ये हमारी कोविड रिलेटेड हुई, मैंने उसमें ये रेज़ किया, मैंने कहा कि ये आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अगर इस किस्म के ट्रांसलेशन और इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा।
और मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि इसको ऐसे स्ट्रेटजाइज किया जा सकता है कि जब हमारे मसले जो हैं बेम के, वो जो बेम लेड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सर्विसेज हैं, उनको ये सर अंजाम देना चाहिए, उनको फंडिंग देनी चाहिए, रिसोर्स करना
qualified,
चाहिए, हाँ जी हाँ, ताकि वो जो आउटपुट भी बेहतर हो और ये ऐसे मसले ना हो, तो ये भी हमें सोचना चाहिए। बहरहाल आपने हमें बहुत कीमती वक्त दिया कांसुस मीना जी, और इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आपसे बातचीत होती रहेगी, टॉपिक्स पे बातचीत होती रहेगी। एंड क्या ख्याल है अब हमारा जो नया सेटअप है इसके बारे में क्या?
मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन लोकेशन है, अप्रोचेबल है, बस स्टॉप आउटसाइड है, आपका ट्राम भी दूर नहीं है, बस स्टेशन भी दूर नहीं है, और मेरा ख्याल है कि
मस्जिद है हमारा, वाटर कम्युनिटी सेंटर बीएसपी है, कम्युनिटी इन द हार्ट ऑफ कम्युनिटी।
लेकिन बात यह है कि आप के उस लिहाज से सोचते हैं और मैं उस लिहाज से सोचती हूँ कि लोग ट्रैवल करके किसी जगह कैसे पहुँचेंगे, तो उस लिहाज से ये बेहतरीन है कि अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो आपके सेंटर तक कैसे पहुँचेगा, उस लिहाज से इसकी बेहतरीन लोकेशन है और एक्सेसिबल है लोगों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप अपना अच्छा काम जारी रखेंगे, और इस वक्त जो हालात से हम गुजर रहे हैं, और लोगों से सबसे यही गुजारिश है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उन पे अमल करें, और हमारे ये सिर्फ यही एक रास्ता है इस वायरस को शिकस्त देने का कि हालात पे अमल करें, वरना शायद ये काम और ज़्यादा लंबा होता जाएगा। आपके मुझे यहाँ बुलाने का बहुत बहुत
इंशाल्लाह ज़रूर तावन होगा, और हमेशा आपकी सपोर्ट रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह।